ये आकाशवाणी है। अब आप करिश्मा राय से समाचार सुनिए। भारत का सकल घरेलू उत्पाद 10 वर्षों में 105% की वृद्धि के साथ दोगुना हो गया है। वर्ष 2015 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2,10,000 करोड़ डॉलर था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 4,30,000 करोड़ डॉलर हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार इस मामले में भारत अब अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद दुनिया में पांचवां सबसे बड़ा देश बन गया है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक छत्तीसगढ़ के विनोद कुमार शुक्ल को सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। श्री शुक्ल पिछले 50 सालों से साहित्य लेखन में लगे हुए हैं। उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद वर्ष 1971 में प्रकाशित हुआ था। उनके उपन्यास नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे और दीवार में एक खिड़की हिंदी के सबसे बेहतरीन उपन्यास में माने जाते हैं। श्री शुक्ल की कविताएं भी बहुत लोकप्रिय हुई हैं। साथ ही उनकी कहानियों का संग्रह पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय भी चर्चा में रहा है। श्री शुक्ल ने बच्चों के लिए भी किताबें लिखी हैं। उनकी किताबों का कई भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। विनोद कुमार शुक्ल को इससे पहले उनके लेखन के लिए कई पुरस्कार मिल चुके हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने पर विनोद कुमार शुक्ल ने कहा कि यह पुरस्कार उन्हें जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा पर बधाई दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त आयोग ने अगले 25 वर्ष में विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योजनाएं तैयार की हैं। उन्होंने चेन्नई में चेन्नई सिटीजन फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के पहलुओं को भी देखा जा रहा है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि अमेरिका की शुल्क नीति जैसी बाहरी चुनौतियां भी हैं और उन्होंने यूक्रेन युद्ध, चीन व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय उतार चढ़ाव समेत कई मुद्दों का उल्लेख किया। वित्त मंत्री ने कहा कि 112 आकांक्षी जिलों को विकसित करने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा है कि 109 पिछड़े जिलों में कृषि उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार को भी महत्व दिया जा रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति आंतरिक जांच का हिस्सा है। इस 3 सदस्यीय समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अनु शिवरामन शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से ये भी कहा है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को कोई न्यायिक कार्य सौंपा ना जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पहले ये कहा गया था कि न्यायाधीश के घर में लगी आग के कारण अप्रत्याशित रूप से बिना हिसाब किताब के नकदी की बरामदी हुई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति वर्मा को उनके मूल उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में फिर से भेजने का निर्णय लिया था। हालांकि शुक्रवार सुबह सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की एक पूर्ण अदालत बैठक में ये सुझाव दिया गया कि केवल दंडात्मक तबादला पर्याप्त नहीं होगा और न्यायाधीश के खिलाफ कुछ ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके बाद पूर्ण अदालत ने सर्वसम्मति से आंतरिक जांच का समर्थन किया, जिसमें तबादले को पहला कदम माना गया। तबादला प्रक्रिया में है, हालांकि इसे अभी सरकार से मंजूरी मिलनी बाकी है। माल और सेवा कर खुफिया महानिदेशालय ने ऑनलाइन मनी गेमिंग की अवैध और अनुपालना नहीं करने वाली 357 वेबसाइट को बंद कर दिया है। महानिदेशालय ने विदेशों से संचालित ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई तेज कर दी है। कोलकाता में आईपीएल क्रिकेट के 18वें संस्करण के पहले मैच में वर्तमान चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को